ओम शांति। एक जेन गुरु के उद्यान में, बगीचे में एक बार वहां जो उगाए हुए कद्दू थे, उन कद्दूओं की आपस में लड़ाई हो गई। उन कद्दूओं में दो ग्रुप हो गए। बहुत ही घमसान लड़ाई हो गई। और जब उस गुरु को यह पता चला तो वो जैन गुरु बगीचे में पहुंचे तो देखा कि सारे कद्दू एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो जैन गुरु ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु वो सुनने को भी तैयार नहीं थे। कुछ का कहना था, या तो दूसरे कद्दू रहेंगे या तो हम रहेंगे। इस बगीचे से, इस गार्डन से इन कद्दूओं को बाहर निकालो। तो जैन गुरु ने बहुत समझाया, परंतु कद्दू अपनी जिद पर अड़े थे। तो जैन गुरु ने कहा, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि मैं कुछ यदि आपको दिखाऊं तो वो दृश्य देखकर तुम वैसा करो जैसा तुमको दिखता है। और वो दिखाता है कि वो जो बौद्ध आश्रम था जहां वो गुरु रहता था और जिसके पीछे ये उद्यान था, वहां पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु ध्यान करने बैठे थे। तो वो कद्दूओं को दिखाता है, देखो उस ओर, क्योंकि वो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बाल तो होते नहीं। तो गुरु ने कहा, देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारी ही तरह कद्दू बैठे हैं वहां पर। वो तो योग में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, जिसको वो झाजेन कहते हैं। झाजेन अर्थात केवल बैठना, कुछ न करना। तो कद्दूओं को गुरु ने कहा, कम से कम वो जो तुम्हारे जो दूसरे भाई कद्दू है उस और मंदिर के अंदर बैठे हुए, कम से कम उनके जैसा तुम बैठ सकते हो। देखो वो भी तो कद्दू ही है। तो वो सारे कद्दू देखते, हां बड़े बड़े कद्दू है, सिर कद्दू जैसा दिखाई दे रहा है। तो वो लोग कहते हां, और वो सारे कद्दू शांत बैठ जाते हैं सिद्धासन ध्यान मुद्रा में, जैसे वो मंदिर के कद्दू अर्थात बौद्ध भिक्षु बैठे थे। और जैसे ही बैठते हैं, धीरे 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 शांत हो जाते हैं। उनके मन में जो क्रोध था, जो आवेग था, जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, वो एकदम शांत हो जाते हैं। फिर गुरु कहता है, अब अपने दोनों हाथ अपने सिर पर ले जाओ। तो सारे जो कद्दू जो लड़ रहे थे और अब शांत हो गए थे, वो सभी अपने हाथ सिर पर ले जाते हैं, अपने दोनों हाथ। और जैसे ही हाथ ऊपर ले जाते हैं, पाते हैं कि एक बेल है, और वो एक ही बेल है जो सारे कद्दूओं को जोड़े हुए है। और अचानक प्रतीति होती है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो सब एक ही है। तो वो जैन गुरु कहता है, ये जो हुआ क्यों हुआ, क्यों इतने शांत हो गए? जैसे ही दूसरे जो शांत थे, जो योगी बैठे थे, जो भिक्षु बैठे थे, उनको केवल देखा, उनकी केवल नकल की, अनुकरण किया, और जैसे ही जैसे बौद्ध भिक्षु बैठे थे, जैसे ही ये कद्दू बैठे, तो ये भी क्या हो गए? शांत हो गए। भगवान के महावाक्य है, तुम्हें केवल वैसे बैठना है, वैसे चलना है, वैसे उठना है, वो तुम्हारी दृष्टि हो, वो तुम्हारी वृत्ति हो, वो तुम्हारे संकल्प हो, वो तुम्हारे बोल हो, जो ब्रह्मा बाप के थे। तुम केवल वैसे बैठ जाओ, तुम केवल वैसा ही सब कुछ करो, तो क्या हो जाओगे? तुम भी शांत हो जाओगे। और जैसे ही शांत हो जाओगे, आंतरिक द्वंद्व, संघर्ष, कलह, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही हाथ ऊपर ले जाओगे, पाओगे एक ही तो बेल है, एक ही तो स्नेह का सूत्र है, एक ही तो धागा है जो हमें बांधे हुए है, और एक नव प्रभात होगा हृदय में। तो आज हम एक यात्रा की चर्चा करेंगे, जैसे कि टॉपिक है द जर्नी ऑफ द फर्स्ट एंजल। किसकी यात्रा? फर्स्ट एंजल की यात्रा, फर्स्ट एंजल की जर्नी। ज्ञान योग से संबंधित विषय पर क्लास कराना हमें लगता है शायद आसान है, उससे थोड़ा कठिन है किसी व्यक्ति के जीवन पर बोलना। संसार में द्वापर से अब तक असंख्य महान आत्माएं हुई है, वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, फिलोसोफर्स, धर्मगुरु, उपदेशक, सन्यासी, उदासी, शंकराचार्य, इमाम, पैगन, पैगंबर, पयंबर, मैसेंजर्स, तीर्थंकर, अवतार, इन सब पर बोला जा सकता है, परंतु थोड़ा कठिन है। परंतु इन सबसे भी कठिन कार्य है उस व्यक्ति के ऊपर बोलना जो कि इस सृष्टि का आदि पिता है। जो कि सागर समान है, जो कि स्वयं भगवान समान बन गया है, इसलिए हम हमेशा से कतराते हैं बाबा पर बोलने के लिए, क्योंकि व्यक्तित्व इतना ऊंचा है, इतना महान है, कि हम कैसे उनके ऊपर बोल पाएंगे, कैसे उनको समझ पाएंगे? क्या हमने पूरा उसको समझा है, वैसे ही समझा है जैसे भगवान ने उसे जाना, भगवान ने उसे समझा? मुरलियों में आता है तुम्हें श्रीमत पर चलना है। आज सुबह भी कहा था, सबकी मत एकत्र है, इसी में क्या है? सैकरीन है। एक यात्री अफ्रीका के जंगल से गुजरता था, उसे पूरे अफ्रीका के जंगलों की यात्रा करनी थी, इसलिए वह एक दुकान में गया और कहा कि मुझे एक दिशा सूचक यंत्र दो, कंपास। तो दुकानदार ने वो यंत्र दिया। उस यंत्र में ऊपर तो था दिशा, जिसको हम जीपीएस आज की भाषा में, उस तरह का वो यंत्र था, पर यंत्र के पीछे एक आईना था। तो वो यात्री पूछता है, ये आईना किस लिए है? ये कोई श्रृंगार का साधन तो है नहीं, कि जिसके पीछे आईना हो। ये तो कंपस है, ये तो वो दिशा सूचक यंत्र है। तो वो दुकानदार कहता है, ऊपर से जो दिख रहा है ये जो यंत्र है जो तुमको दिशा दिखाएगा। यदि तुम भटक गए जंगलों में तो ऊपर का यंत्र कंपस तुमको दिशा दिखाएगा, और पीछे जो आईना है वो ये दिखाएगा कि भटक कौन गया है। जो वो कंपस है वो है श्रीमत, और वो जो आईना है वो है ब्रह्मा का जीवन। श्रीमत ये बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। परंतु कभी कभी हम यही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। वो मैं कौन हूं ये दिखा देखने का आईना ब्रह्मा का जीवन है। तो आज हम बाबा के जीवन की जो यात्रा है, लंबी यात्रा, ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा तक की यात्रा, वो कौन से अध्याय थे, वो कौन सी बातें थी, वो कौन सी घटनाएं थी जिससे ब्रह्मा, दादा लेखराज नहीं, ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा बना। तो ऐसी हम लगभग 18 यात्राएं देखेंगे, 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नीज। ऐसी 18 यात्रा जो कि ब्रह्मा बाबा ने की ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा बनने तक, ब्रह्मा से संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण एंजल अवस्था प्राप्त करने तक। गीता में 18 अध्याय है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, महाभारत में 18 सेनाएं थी, 11 इधर से और 7 उधर से। रामायण का युद्ध 18 दिन तक चला, ब्रह्मा के जीवन में भी 18 अध्याय है। वो अध्याय बचपन से है, हम उस बचपन की आज चर्चा नहीं करेंगे, हम आज चर्चा करेंगे और साथ साथ अनुभव भी कि कैसे ब्रह्मा ब्रह्मा बना। सबसे पहले तो एक नजर उस समय की ओर, समाज की क्या गति थी, समाज की क्या दिशा थी। वो समय जिस समय भगवान इस धरा पर आए, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारत पर था, उसमें भी 3 व्यक्तियों का मुख्य रूप से, कार्ल मार्क्स अपनी कम्युनिस्ट फिलॉसफी को लेकर आया था जिसको बहुत जल्दी सारा विश्व स्वीकार कर रहा था, नास्तिकवाद, और वहीं पर बहुत सारे विज्ञान की खोजें हो रही थी जो ये बता रही थी कि बाइबल में जो बातें लिखी है झूठी है, इसलिए फ्रेडरिच नीत्शे ने घोषणा कर दी थी, गॉड इज डेड, मैन इज नाउ फ्री। सारे विश्व में ये वाक्य ऐसे फैल गया था कि भगवान मर चुका है, मैन इज नाउ फ्री। ये जो बॉन्डेजेस है रिलीजन के, धर्म के, सुपरस्टिशन के, अंधश्रद्धा के, रूढ़िवादिता के, इन सब से सबको मुक्त करना है। सबसे पहला व्यक्ति कार्ल मार्क्स, दूसरा चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिस थियरी ने कहा कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है उसके जो पूर्वज है वो कौन थे? प्राणी थे, बंदर थे। कहां वो वेदों के वाक्य कि जो वेद कह रहे थे भारत में उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़े रहकर चिल्लाता है, श्रृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात्। हे मनुष्यात्माओं सुनो, श्रृण्वन्ति विश्वे, हे विश्व की आत्माएं, अमृतस्य पुत्राः, ई आर चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टेलिटी, तुम सभी कौन हो? देव पुत्र हो, देवों की संतान हो, देवताएं तुम्हारे पूर्वज है, तुम वही देवता हो। आदित्य वर्णम, जिसका वेदों में गायन है, तमसा परस्तात्, तम को, तमस को, तिमिर को, अंधकार को भगाने वाले, तुम वह ज्ञान स्वरूप देवता हो। ये वेदों की घोषणा, भारत के शास्त्रों की घोषणा, और कहां तो चार्ल्स डार्विन की थियरी कहती है कि पूर्वज कौन थे? तीसरा व्यक्ति सिगमंड फ्रायड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जिसने कहा कि काम विकार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, यदि इसे दबाओगे तो विक्षिप्तता होगी, और ये प्रकट करना ही जीवन है। कहां तो पवित्रता का संदेश, और कहां ये कि इस फिलॉसफी के कारण काम विकार को सारे विश्व में स्वीकृति मिली कि इसे दबाना नहीं है, इसे प्रकट करो। इन तीन व्यक्तियों का प्रभाव संसार में था, और उसी समय पर लेखराज, दादा लेखराज का जन्म और आगे का जीवन, और बाद में भगवान की उनके जीवन में प्रवेश था। सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और राजनीतिक स्थिति क्या थी? विश्व महायुद्ध पहला हो चुका था, दूसरे की तैयारियां चालू थी, राजनीतिक अराजकता थी, एनार्की थी संसार में, हलचल चालू थी। बाबा के जीवन में उल्लेख है, बाबा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनकी बेटी उनके साथ है, निर्मल शांता दादी पूछती है, बाबा आप क्या पढ़ रहे हो? बाबा कहते हैं, मैं गीता पढ़ रहा हूं। और गीता में क्या पढ़ रहे हो? तो बाबा सुनाते हैं ट्रेन में बैठकर कि यहां लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की कब ग्लानि होती है, तब तब भगवान आते हैं। पिप्रसंत सुरधेनु हि तो प्रभुधरि पिपित शरीरा, भगवान शरीर धारण करके संसार में आते हैं। तो निर्मल शांता दादी पूछती है, क्या धर्म ग्लानि अब नहीं हो रही है? क्या भगवान अब आने का समय नहीं हो गया है? तो दादा सोच में पड़ जाते हैं, उत्तर नहीं होता है कुछ। परमात्मा प्रवेशता के पहले की ये बातें हैं। ऐसा वो समाज, उसमें भी सिंध हैदराबाद, जहां पर पुरुष प्रधान समाज धन लोलुपता में फंसा हुआ था, स्त्री नारी श्रृंगार रस में डूबी हुई थी, ऐसे परिपेक्ष में जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। कैसे एक साधारण सा व्यापारी आदि देव बन गया, आदि पिता बन गया। तो इससे पहले कि हम वो 18 यात्राएं देखें, सभी अलर्ट होके बैठेंगे और हम अपनी एक यात्रा करेंगे। एक छोटा सा योग का प्रयोग, सॉफ्ट म्यूजिक बजाएंगे, लाल लाइट, प्रकृति के मध्य में विराजमान। चेतना की वह शक्तिशाली तरंग, मैं हूं। देह की संपूर्ण विस्मृति, मन शांत, संपूर्ण मौन, संपूर्ण आत्मिक स्थिति, मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। देह की स्मृति लोप हो रही है, एक अनोखा सा हल्कापन, मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को धारण कर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहे उड़ रही हूं ऊपर आकाश की ओर और ऊपर। अंतरिक्ष से परे सूक्ष्म वतन में हूं, और ये क्या, ये कौन सामने खड़ा है? आज वतन में बाप दादा नहीं है, चमकीली ड्रेस वाला, ये तो मेरा ही अपना संपूर्ण बाप समान फरिश्ता स्वरूप है, देख रहा हूं स्वयं के ही स्वरूप को, ये मैं ही हूं, संपूर्ण लाइट, संपूर्ण पवित्र, श्वेत दीप्यमान, मैं अपने ही ब्रह्मा बाप समान शक्तिशाली स्वरूप को देख रहा हूं। ये मेरी ही कर्मातीत स्थिति है, हे मेरे स्वरूप, क्यों तुझ में और मुझ में इतना अंतर? क्या मैं करूं कि तुझ तक पहुंच जाऊं व्यक्त आकर्षण से परे, आवाज से परे, और मैं देख रहा हूं और समीप से कैसा ये मेरा ही स्वरूप है। सारी कमजोरियां समाप्त हो चुकी है, एक की लगन में मगन हूं। कितनी शक्तिशाली स्थिति है ये मेरी, अपने ही स्वरूप से बातें कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं फरिश्ता वापस इस छवि को मन में समाये हुए नीचे उतरता हूं, वापस इस पार्थिव शरीर में प्रवेश। ओम शांति। तो जिस आदि पिता ने ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा तक की यात्रा की, उसमें सबसे पहली यात्रा है। ऐसी 18 यात्राएं हम देखेंगे। सबसे पहली यात्रा समर्पण और निश्चय की यात्रा, द जर्नी ऑफ सरेंडर एंड फेथ। भारत का इतिहास साक्षी है और विश्व का इतिहास भी साक्षी है। महात्मा बुद्ध ने कभी कहा था, मैं एक और जन्म लूंगा, उस जन्म का नाम होगा मैत्रेय। 2500 वर्ष हो गए, मैत्रेय की आत्मा अब तक नहीं आई। संसार के सारे विचारक, सारे धर्म स्थापक, सारे धार्मिक लोग चिंतित थे कि कैसे वो मैत्रेय की आत्मा आ जाए, कौन वो मीडियम बने, कौन वो चैनल बने और कौन वो वर्ल्ड टीचर बने। बहुत ढूंढा, नहीं आई। बहुत इंतजार किया, नहीं आई। फिर से विचारक बैठे और उन्होंने ये निर्णय किया, क्या किसी एक छोटे से बच्चे को तैयार किया जा सकता है, क्या किसी बालक को तैयार किया जा सकता है, ऐसा वो बच्चा हो जिसमें फिर वो बुद्ध की आत्मा प्रवेश करे, मैत्रेय की। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैत्री थियोसॉफिकल सोसाइटी थी भारत में और विदेश में। उसकी प्रमुख थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और उसके साथियों ने यह निर्णय किया कि हम एक बच्चे को ढूंढेंगे जिसमें बुद्ध की आत्मा मैत्रेयी के रूप में प्रवेश करेगी, एंड ही विल बी द वर्ल्ड टीचर। और खोज चालू की, और जहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी थी एक जगह, उसी के बाजू में एक दिन एक 11 साल का बच्चा खेलता हुआ नजर आया और उन्होंने उसको स्पॉट किया और कहा कि यह बच्चा योग्य हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ अद्वितीय, कुछ ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं जो और किसी में नहीं। अगर इस बच्चे को तैयार किया जाए, बचपन से ऐसी शिक्षाएं दी जाए, आध्यात्मिक शिक्षाएं, तो यही बच्चा इतना तैयार हो सकता है कि उसमें वो आत्मा प्रवेश करेगी और वो वर्ल्ड टीचर बनके विश्व का उद्धार करेगी। वो बच्चा था जिड्डू कृष्णमूर्ति। उस कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट अडॉप्ट करती है, उसके भाई को भी नित्यानंद, और भी ऐसे दो लोग थे, कृष्ण मेनन और अरुंडले, ऐसे 4 बच्चे। इनको एनी बेसेंट अडॉप्ट करती है और बचपन से ऐसी रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है अध्यात्म की, कर्मेंद्रिय जीत बनने की, ताकि ये योग्य बन जाए। और फिर उस मैत्री की आत्मा का इसमें आह्वान किया जा सके, वर्ल्ड टीचर बनेगी वो आत्मा। उस बच्चे को वो लंदन ले जाती है, जिड्डू कृष्णमूर्ति को। वहां जाकर उसकी ट्रेनिंग चलती है। पिताजी केस भी करते हैं कि मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए, फिर भी केस वहां जाकर एनी बेसेंट जीत जाती है। और उसको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर 1921 हॉलैंड, 6000 लोगों की सभा, जहां पर कृष्णमूर्ति के शरीर में महात्मा बुद्ध की आत्मा मैत्रेय रूप में प्रवेश करने वाली थी, परंतु एन मौके पर कृष्णमूर्ति इनकार कर देता है, क्योंकि जब मैत्रेय की आत्मा शरीर में आएगी तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे अस्तित्व का क्या होगा, महिमा सारी मैत्रेय की होगी। वो आत्मा मेरे शरीर में आकर अपना कार्य करेगी। अब तक जो समर्पण भाव था कृष्णमूर्ति का, ठुकरा दिया। उसका अपना लॉजिक खड़ा हुआ और उसने मना कर दिया। उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुरी गति हुई, क्योंकि सारे विश्व में संदेश फैल चुका था कि ऐसी सभा में यह होने वाला है। और फिर कृष्णमूर्ति ने अपनी ही विचारधारा चालू की, परंतु उसे स्वीकार नहीं था कि कोई दूसरी आत्मा मुझ में प्रवेश करे, वो कार्य करे। वह व्यक्ति जो कि एक व्यापारी था, वह व्यक्ति जो कि वानप्रस्थ अवस्था में था, वह व्यक्ति जो कि अब सोच रहा था कि थोड़ा सा धन और कमाऊं और उसके बाद में संन्यास ले लूं अपनी पत्नी के साथ, वह व्यक्ति जिसका इतना बड़ा व्यापार था, वह व्यक्ति जिसकी इतनी संसार में प्रतिष्ठा थी, वह व्यक्ति जो इतना सुखी था, संपन्न था, वह व्यक्ति जिसके 12 गुरु थे, वह व्यक्ति जो इतना धार्मिक था, ऐसे व्यक्ति में अचानक एक दिन कोई दूसरी आत्मा आ जाती है और वो कहती है शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। कितना बड़ा ये निश्चय और समर्पण था ब्रह्मा का, क्योंकि अब जो आत्मा अंदर प्रवेश किए है उसके बाद मेरा अपना अस्तित्व नहीं रहेगा, मेरे अपने विचार नहीं रहेंगे, मैं कौन रहूंगा, वो सारा त्याग कर दिया, वो सारा अर्पण कर दिया, अब उस आत्मा अपना कार्य मेरे शरीर द्वारा करेगी। जहां कृष्णमूर्ति के शरीर ने, चित्त ने, मन ने उसे स्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वहां अपना सूक्ष्म अहम जागृत हो गया था। इतने वर्षों की ट्रेनिंग, 11 साल का था तब से ट्रेनिंग चालू हुई थी कृष्णमूर्ति की, फिर भी डिनाय कर दिया। सबसे पहली यात्रा जो ब्रह्मा बाबा की थी वो थी निश्चय की और समर्पण की। वहां से चालू हुआ और वो निश्चय इतना सूक्ष्म होते गया, धीरे धीरे नशा बन गया, धीरे धीरे स्वमान बन गया, निश्चय ने रूप बदला स्वमान में और नशे में। वो जो समर्पण सूक्ष्म था, चूल था, धीरे धीरे सूक्ष्म होता चला गया। क्या हम में, यदि हमें यदि ये कहा जाए कि कोई दूसरी आत्मा हम में आ जाए, फिर उसकी महिमा होगी, वो जो बोलेगा उसकी महिमा होगी, तुम्हारी नहीं होगी, जो सेवा होगी तुमने नहीं की, उसने की, तो क्या हम स्वीकार करेंगे? कितना बड़ा समर्पण है ये, उस परम सत्ता के आगे संपूर्ण समर्पण, कि अब मैं नहीं तू, अब मैं नहीं रहा तुम करोगे। हंसी की बात वरिष्ठ भाई बहने बताते हैं कि बाबा ने एक बार जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बाबा ने कह दिया था मुरली में, ये क्या छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं भारत पाकिस्तान, तो ये सेंसिटिव इश्यू है भारत पाकिस्तान का। तो बहुत सारे पत्रकारों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया, तो भाई बहने बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा आप ऐसी बातें नहीं किया करो, भारत पाकिस्तान वाली हॉट इश्यू है। तो बाबा ने कहा, हां मैं शिव बाबा को बता दूंगा कि ऐसी बातें ना करें। जैसे मैं कुछ है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, वो है, मेरा अस्तित्व ही, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा वजूद नष्ट हो चुका है। पहली यात्रा है समर्पण की और निश्चय की यात्रा, दूसरी यात्रा त्याग की और वैराग की। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी संपत्ति, धक से निश्चय हुआ, जब धक से देख लिया ये जो हीरे है ये व्यर्थ है, अब जो मेरे पास हीरे है वो ज्ञान के हीरे है, ये अब मुझे एकत्र करना है, इन्हें मुझे अब समाना है अपने अंदर, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को झूठी बादशाही, झूठी बादशाही अब मुझे नहीं चाहिए, धक से त्याग कर दिया, धक से वैराग। और वो वैराग भी कैसा वैराग था, असाधारण सा, स्थूल से चालू हुआ, धीरे धीरे सूक्ष्म होता गया, धीरे धीरे त्याग सूक्ष्म होते गया, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि भगवान मुझ में प्रवेश करते हैं, मैं यहां का हेड हूं। ये धीरे 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 धीरे, कितना आंतरिक आंतरिक अंतस का पुरुषार्थ होगा उस आत्मा का, कैसा वो वैराग भी तीव्र तीव्रतर होगा, सब कुछ है पर कुछ नहीं चाहिए। परा वैराग। स्थूल वैराग तो सब कर सकते हैं, सूक्ष्म वैराग, वाणी से वैराग, आवाज से वैराग, वाचा से वैराग, मैं से वैराग, मैंने किया इससे वैराग, मैं हूं इससे वैराग। क्या हमारा वैराग ऐसा है? अभी अभी मुरली में आया था, शुक्रवार की साकार मुरली। तुम्हारी बुद्धि में विचार आना चाहिए, अब हम जाते हैं बाबा के साथ घर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन थी, ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। वैराग अर्थात देह और संसार असार। वैराग की सर्वोत्तम परिभाषा है, जब ये लगने लगे ये संसार में कुछ भी पाने जैसा नहीं है, असार है, और ये देह मिट्टी है। संसार असार देह मिट्टी अर्थात वैराग। तो दूसरी यात्रा जो ब्रह्मा ने चालू की थी वो थी वैराग की और त्याग की। स्वयं के त्याग को चेक करना है। शायद वैराग की चर्चा आजकल कम हो गई है, पर क्या धधकते हुए वैराग के बिना अध्यात्म में कोई आगे बढ़ सकता है? क्या संसार में आसक्त और लगाव वाली आत्मा कभी परमात्मा से अनुराग रख सकती है? ईश्वरे अनुराग विषये विराग। जब तक विषयों से विराग नहीं, जब तक चेतना वितराग की अवस्था को नहीं पाती, जब तक उसे धक्का नहीं लगता संसार से कि झूठ है, यहां पर मिथ्या है, तब तक वो अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ती। धक्का चाहिए, शॉक। जब प्रतीत हो संसार असार है, यहां कुछ भी पाने योग्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म एंड इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। मुझे घृणा है इस संसार से, इस दुस्वप्न से, स्वप्न मात्र है, यहां पर कुछ भी सत्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, चेहरे बहुत सुंदर है पर अंदर खोटे है, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग है, चारों ओर बाजार लगा हुआ है, ये दो तो वो मिलेगा। तीसरा कदम ब्रह्मचर्य और पवित्रता का कदम। बाबा को सूक्ष्म में एक बात का पश्चाताप था अपने जीवन में, कौन सी हो सकती है, कौन सी? बाद में उन्होंने उसको ठीक कर लिया, अपनी बेटी की शादी करने की, निर्मल शांता दादी। इसके लिए उसको लाना बहुत आवश्यकता था। दादी की किताब पढ़ो, उसमें अनुभव लिखा है। बाबा का जो प्रेम था ब्रह्मचर्य के लिए, चैस्टिटी के लिए, प्यूरिटी के लिए, वो आधारशिला बनी इस यज्ञ की पवित्रता। ऐसी निर्विरोध निर्बाध पवित्रता, जितने विघ्न यज्ञ मराए, जितना विरोध हुआ, मित्र शत्रु बन गए, किस लिए? केवल इस एक बात के लिए। परंतु बाबा ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है चलेगा, भगवान की आज्ञा है, मेरी आज्ञा नहीं है। भगवान स्वयं कह रहा है कि अब पवित्र बनने का समय है, काम विकार ने तुम्हें बहुत धोखा दिया है, बहुत दुख दिया है, अब निकलो इससे बाहर। साकार महावाक्य है, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, बच्चे पवित्र बनो। दादियों ने जो सहन किया, माताओं ने जो सहन किया, क्यों क्यों विरोध हुआ इतना, क्यों सताया गया? सताने की जो दास्ता है वो किसी किताब में वर्णन नहीं है, इतनी दर्दनाक है। तालों में बंद कर दिया गया, मांस जबरदस्ती खिलाया गया, शारीरिक यातनाएं मानसिक यातनाएं पहुंचाई गई, परंतु बाबा ने मार्ग चुना था ब्रह्मचर्य का और पवित्रता का, उसको नहीं छोड़ा। और वो ब्रह्मचर्य धीरे धीरे ब्रह्माचर्य में रूपांतरित हुआ, वो पवित्रता धीरे धीरे पावनता बनी, कंप्लीट प्यूरिटी। संडे की मुरली, पांडवों से मुलाकात, तुम्हारे स्वप्न भी विजयी हो, स्वप्न में भी विजय, ऐसी पवित्रता, स्वप्न में भी हार ना हो, ऐसी यात्रा पवित्रता की। हम इस यात्रा में कहां पर है? कहीं यात्रा में आगे बढ़ने के बाद बीच बीच में पीछे तो नहीं चले जाते? कहीं आगे बढ़ने के बाद फिर से वही अपवित्रता, फिर से वही वासना, वही से इच्छा, वही देह और देह का आकर्षण खींचता तो नहीं? क्या पवित्रता की ऐसी धधकती अग्नि हमारे रंग नसों में, धमनियों में बह रही है, या हम कहते हैं चलता है, हो जाता है, थोड़ा सा तो देख लिया, टीवी देख लिया, सीरियल देख लिया, वीडियो देख ली, मूवी देख ली, क्या फर्क पड़ता है, एडवर्टाइज देख ली, बहुत थोड़ा नहीं बहुत है। सफेद कागज पर काला दाग है, 15 नवंबर 2003, अव्यक्तवाणी। विदेश में दूसरी शताब्दी में एक महिला हुई थी जिसका नाम था थेकला, सेंट थेकला। छोटी सी कन्या थी, फिर बड़ी हुई। एक बार खिड़की पर खड़ी थी, उसका किसी युवक से प्रेम भी था, शादी भी होने वाली थी, उसकी मां भी राजी थी। एक बार खड़े खड़े खिड़की पर खड़े खड़े वहां से सेंट पॉल जाते रहता है, अपोसल पॉल, और अपोसल पॉल कहते रहता है, ही हु डजंट डिफाइल हिज बॉडी शैल बी नियर गॉड, जो अपने शरीर को अपवित्र नहीं करेगा वही परमात्मा के समीप जाएगा। और वो दिन रात चैस्टिटी पवित्रता के वो प्रवचन खिड़की पर बैठकर सुनते रहती है, और अचानक उसमें वैराग आता है और वो सोचती है कि अब मैं पवित्र ही रहूंगी। वो जवान, वो नवजवान स्त्री और उसका जो होने वाला पति और उसकी खुद की मां उसे बहुत समझाते, वो नहीं मानती है। तो उसका जो पति होने वाला होता है वो एक षड्यंत्र करता है और दोनों को गवर्नर के सामने पेश करता है, और उसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है, ऐसी सजा कि बाकी सारी स्त्रियां याद रखेगी। शहर के बीच में खंभे पर खड़े कर उसको जलाया जाता है ताकि बाकी स्त्रियां समझ ले, जो इस तरह का व्रत लेगी पवित्रता का, वो सारी स्त्रियां, वो सारी वाइव्स, वो सारी पत्नियां और दूसरी महिला याद रखे इसको देखकर। बर्नड एट द स्टेक, वहां पर उसको बांधा जाता है और वहां पर उसको जलाया जाता है, परंतु मिराकुलस एस्केप होता है। अचानक थोड़े ही देर में बादल बरसते हैं और वर्षा होने लगती है और वो बच जाती है। वहां से वो छूटती है, वहां से छूटती है, फिर से सेंट पॉल से मिलती है और सेंट पॉल को कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है तुम चली जाओ, इस मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। वो कहती है मैंने एक बार पवित्रता का मार्ग ले लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो कहता है तुम अपना चेहरा बदल लो, तुम बहुत सुंदर हो, शायद लोग फिर भी आकर्षित हो जाए। तो वो पुरुष का शरीर धारण करती है, वेश बदलती है, दूसरे गांव में टर्की के एक जगह जाती है, परंतु वहां एक दुष्ट व्यक्ति होता है अलेक्जेंडर नाम का, वो उसे पहचान लेता है, ये स्त्री है। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो पब्लिकली थेलका उसका अपमान कर देती है, थेकला। तो वो बदला लेना चाहता है और बदला वो ऐसा जबरदस्त बदला लेता है, सारे गांव को और राजा को सबको उस दोनों के विरुद्ध कर देता है। वो सेंट पॉल को तो बहुत मारते हैं, थेकला को एक एरिना अखाड़े के बीच में खड़े भेज देते हैं, सारा टर्की देखने के लिए ऊपर मैदान में, और वहां पर जंगली जानवर, भूखे दो शेर और भूखी एक शेरनी के बीच में उसको धकेल देते हैं, और वो फिर से जीजस को याद करती है। कि फॉर यू, तुम्हारे लिए मैंने यह पवित्रता का व्रत लिया है। प्रिजर्व माय वर्जिनिटी ओ लॉर्ड। और दिखाया है वो जो फीमेल लायनेस शेरनी होती है वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और दो शेर को बिल्कुल आने नहीं देती है, फिर से मिराकुलस एस्केप होता है और वहीं पर वो पानी जो होता है वो थेकला जाती है और वहां के पानी से अब उसको किसी की आवश्यकता नहीं। बैप्टिज्म क्रिश्चियनिटी में होता है, नामकरण किसी पुरुष के द्वारा होता है वो हमेशा। वो कहती है कोई पुरुष की मुझे अब आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई बैप्टाइज माई सेल्फ। वहां से फिर छूटती है, फिर रोम पहुंचती है। रोम में गुफा में लगभग 90-70 साल तक रो रहती है और वहां पर प्यूरिटी के कारण उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, हीलिंग पावर। जो भी मरीज आते हैं उसको वो ठीक करने लगती है। जब वो 90 वर्ष की हो जाती है वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको फिर जलन होती है क्योंकि सारे मरीज इसके पास जा रहे। वो फिर 90 वर्ष की उस कन्या की पवित्रता भंग करने के लिए युवकों को भेजते हैं। थर्ड मिराकुलस एस्केप, वो केव आज भी टर्की में है, मार्टिरडम ऑफ सेंट थेकला। एक्ट्स ऑफ सेंट पाउल एंड थेकला में सारा वर्णन है, बाइबल में नहीं है पर इसमें है। वहां एक नई गुफा प्रकट होती है और जो लोग उसका पीछा करते हैं वहां एक दीवार खड़ी हो जाती है, गुफा से पत्थर गिरते हैं और दीवार बनती है और वो सदैव जीसस में समा जाती है। ऐसा गायन है, ब्रह्मा के जीवन में सारे विघ्न आए क्यों आए, इसी पवित्रता के कारण। परंतु छोड़ा ही नहीं इस प्रतिज्ञा को, इतनी माताओं को सताया गया, मारा गया, तालों में रखा गया, यातनाएं दी गई, मानसिक यातनाएं, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, पर छोड़ा नहीं। और वही सब क्या बन गई, शेरनिया। चौथी यात्रा, सामना करने की और समाने की यात्रा। जबरदस्त विरोध हुआ आर्य समाज की ओर से और कितने ही संस्थाओं की ओर से, अपने पराये हो गए, निंदा करने लगे, ग्लानी करने लगे। द सिंध ऑब्जर्वर नाम का एक न्यूज़पेपर था वहां पर, सिंध ऑब्जर्वर, उसमें बाबा के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, सॉर्सरी एंड लेचरी। इंग्लिश के शब्द है, सॉर्सरी अर्थात जादू टोना करने वाला, लेचरी अर्थात कामुक व्यक्ति, कामुक चेष्टाएं करने वाला। विरोध हुआ, पिकेटिंग हुई 21 जून 1938। पिकेटिंग अर्थात नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, खड़े हो जाना। वायलेंस अगर करते हैं तो अखबार वाले, सारा देश, सारे समाज विरोध करेंगे, देखो ये लोग वायलेंस कर रहे हैं। इसके लिए वो सारे विरोधी क्या हो गए, आके खड़े हो गए। ओम निवास के अंदर वाले ओम निवास में रहेंगे, बाहर वाले बाहर। सुबह 5:30 बजे से चालू हुई, दोपहर तक, शाम तक, 3 दिन तक चला। फिर कहीं तीसरे दिन आकर कलेक्टर ने आकर उसको रुका। लाखा भवन, 6 अगस्त 1938, आग लगा दी गई, मारने को लोग आए। कितना विरोध, सारे विरोध का सामना किया, सहन किया, निंदा को, ग्लानी को, अपमान को, इंसल्ट को, सामना करने की यात्रा, सहन करने की यात्रा थी वो। अगला, ज्ञान और मुरली की यात्रा। ज्ञान और मुरली की यात्रा, पहले ही दिन से ज्ञान से इतना प्यार, उस मुरली से इतना प्यार, क्योंकि महावाक्य किसके है, मेरे नहीं है, उसके है। क्लिफ्टन पर 5 भवन बने उधर, बाबा भवन, बेबी भवन, बॉयज भवन और दो। रोज टॉपिक्स देते थे बाबा, लिखने को कहते थे। 14 साल की हम कहते हैं तपस्या हुई, क्या था वो? ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, एक्सपेरिमेंट्स। समय कौन सा था? 38 से लेकर तो 50 तक कराची में तपस्या, ये सब पीरियड केवल और केवल ज्ञान मनन। बाहर दूसरा महायुद्ध चालू हो चुका था, बाद में पार्टीशन हो चुका था, पार्टीशन के 3 साल तक होने के बाद भी वो लोग वहीं रहे 50 तक। ज्ञान से क्या हमें इतना ही प्यार है जितना ब्रह्मा को था? ब्रह्मा ने कैसे मुरली की यात्रा, ज्ञान की यात्रा चालू की? क्या हमारे जीवन में भी हम ऐसी यात्रा कर रहे हैं? कोई कितना भी कहे हमें बाबा से बहुत प्यार है, परंतु मुरली से प्यार नहीं, चिंतन से प्यार नहीं, मनन से प्यार नहीं, अध्ययन से प्यार नहीं, ज्ञान की चर्चा से प्यार नहीं, तो आडंबर है, झूठ है, दंभ है। जैसा अध्ययन, जैसी पढ़ाई नंबर 1 स्टूडेंट ने की थी, वैसी सबको करनी होगी, नहीं तो वो सेवाएं कितनी भी करो भाग रहे सेवाओं में, पर जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए, और फिर सेवाओं में संघर्ष, योग नहीं और केवल सेवा, और सेवा आवश्यक बहुत है, परंतु सेवाओं के जंगल में कहीं पुरुषार्थ ना खो जाए। अगली यात्रा पालना और अनुशासन की यात्रा, 14 साल, 2 साल सिंध हैदराबाद, 12 साल कराची, या कहो 12 साल कराची और 1 साल अज्ञातवास जैसे पांडव, 14 साल जैसे राम का वनवास, संसार सोशल मीडिया से कट ऑफ, क्या एक दिन हम ऑफलाइन रह सकते हैं? एक दिन ऑफलाइन, यदि कहा जाए इंटरनेट बंद रहेगा एक दिन, बेचैनी तो नहीं होगी? दादिया 14 साल तक संसार में क्या हो रहा है पता ही नहीं, सत्ता पलट गई, सिक्के बदल गए, दादियों को पता ही नहीं। दादिया जब निकली रिक्शा में बैठी, रिक्शे वाले ने कहा कितने, 1 रुपया देना है, उनको पता ही नहीं 58 बदल गई और 1 रुपया बदल गया है, सत्ता पलट चुकी थी, कुछ खबर नहीं संसार में क्या हो रहा है। दादी ने कहा ये ले लो, इसमें से जो होगा वो आप ले लो, उसको पता ही नहीं 58 किसको कहते हैं और 1 रुपया किसको कहते हैं। पहले तपस्या की, फिर सेवा में उतरी सारी दादियां, और बाबा ने सबकी पालना की, मम्मा ने सबकी पालना की, कचेरी चार्ट योग का पहरा रहता था वहां पर, हर एक की ड्यूटी रहती थी टर्न बाय टर्न, योग का पहरा रात भर, और कैसी पालना की, ऐसी पालना की कि वो रहीस घर से आई हुई कन्याएं अपने घर को भूल गई। नया अनुशासन दिया उनको, जिसने दिन भर गलती की वो बताओ अपनी गलती शाम की कचेरी में, जिसने दूसरे को गलती करते देखा वो भी बताओ, ये दूसरा प्रश्न रहता था कचेरी में। मनोरिंद्र दादी लिखती है कि एक बार जब हमको देखा कि किचन में कद्दू बन रही है, कद्दू की सब्जी, ये तो हमने खाया ही नहीं, हमको पसंद ही नहीं है, तो एक बहन ने बताया कि इन्होंने आज यज्ञ के अन्न की ग्लानी की है। बाबा ने, मम्मा ने पूछा तुमने ऐसे कहा? उन्होंने कहा हाँ मम्मा, हमें तो, हमने ये चीजें वहां कभी पहले खाई नहीं, हम तो इतने थाट बाट में रहे। मम्मा ने शिक्षाएं दी, अनुशासन सिखाया, बाबा ने भी सिखाया। पालना की यात्रा वो वहां से चालू की, वो यात्रा 69 तक बाबा की चालू थी, वो पालना धीरे धीरे सूक्ष्म होती गई, स्थूल थी फिर धीरे धीरे सूक्ष्म में रूपांतरित हुई। 7वीं यात्रा स्वरूप और धारणा की यात्रा, जो जो बाबा ने किया सिखाया वो खुद सीखे, पहले खुद किया फिर सिखाया, ऐसे नहीं कि केवल दूसरों को श्रीमत सिखाना। दूसरों को श्रीमत बताना सबसे आसान काम है ब्राह्मणों के लिए, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, परंतु वो तो स्वयं ही स्वरूप बने। चला कल्प तरुंचे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव बोलती जे अर्णव पीयूषाचे। महाराष्ट्र के संत लिखते हैं, संत कैसा हो पसायदान में, सला कल्प तरुण छे आरव, जैसे चलता फिरता एक नहीं आरव, पूरा उद्यान चल रहा है कल्पतरु का। एक कल्पतरु के यदि किसी को मिल जाए तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा ये ब्रह्मा का जीवन है। चेतना चिंता मणि से गाव, एक चिंतामणि ने जैसे चलता फिरता गाव है चिंतामणि का। बोलते जे अर्णव, जो निकल रहा है मुख से, क्या निकल रहा है? अमृत पीयूषा चे अर्णव, समुद्र है पूरा। ये सात यात्राएं सिंध हैदराबाद और कराची की। यज्ञ भारत में आया, माउंट अबू पहुंचे 5 मई 1950, 5:50। यहां की फिर सात यात्राएं और फिर चार। यहां आने के बाद सबसे पहली यात्रा थी, ऐसी परिस्थिति जिससे गुजरना पड़ा, वो थी प्राकृतिक परिस्थितियां। अत्यंत ठंड थी माउंट में, सबकी तबीयत बिगड़ने लगी, बाबा भी तो वृद्ध हो रहे थे। सारी प्राकृतिक परिस्थितियों को समाया, सहन किया, यह भी एक यात्रा है। ब्रिजकोटी में सांप दिखे, बच्चियां घबराई, बाबा ने कहा यह सांप तो कुछ नहीं, तुम्हें तो काम क्रोध लोभ के सांप से युद्ध करना है। 18 मई 1974, स्माइलिंग बुद्धा, फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब पोखरान में इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया, टेस्टिंग हुआ था। उसके बाद माउंट में थोड़ी गर्मी पड़ी, उसके पहले तक जबरदस्त ठंड थी। और यज्ञ यहां 1950 में आया। आदत नहीं थी पहाड़ों पर रहने की, उसका भी सामना किया, वो भी एक यात्रा थी। दूसरी यात्रा यहां आने के बाद बेगरी पार्ट, जिनकी इतनी पालना की, झुंड के झुंड चले गए, पलायन कर गए। मनुष्य की रिएक्शन तो ये नॉर्मल होती है कि जिसकी हमने 10 साल तक पालना की, 20 साल तक पालना की, अचानक एक दिन कहे कि मैं जा रहा हूं, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है अंदर। सब चले गए, बाबा अचल, कुछ नहीं था, वो सारा धन संपत्ति खत्म हो गई थी, परंतु निश्चय था ये कार्य किसका है, मेरा नहीं, मेरे पैसों से नहीं, वो चला रहा है। जिन्होंने कहा कि बाबा हम जाकर धन कमाते हैं, बाबा ने कहा आवश्यकता नहीं है, कार्य उसका है। उसको भी पार किया, वो भी एक यात्रा थी, जीवन की यात्रा। और हर एक के जीवन में ऐसी यात्रा आ सकती है, आर्थिक तंगी, या स्वजन छोड़कर चले जाए, या कोई धोखा दे दे, कोई अपना ही हर्ट करे। कहा नहीं किसी से, यह भी नहीं कहा, इजहार नहीं किया मैं दुखी हो रहा हूं, नहीं जाओ, स्थिति सर्वोपरि थी। तीसरी यात्रा सेवा का विस्तार हुआ। यहां पर नई नई युक्तियां बाबा ने दिन रात सोचते रहे, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, और सेवा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या हम जहां रहते हैं, हम जिस सेवा केंद्र में है, क्या दिन रात हमारे मन में भी ऐसी ही प्लानिंग चलती रहती है, यहां जाएंगे तो ये सेवा कर सकते, कौन कौन सी एरियाज है अनटैप्ड एरियाज, कौन कौन से वर्ग है, समुदाय है, लोग है, आत्माएं है, आदिवासी वेश्या है, कौन रह गए। सेवाओं का विस्तार किया, ये भी एक यात्रा थी। अगली यात्रा सेवाओं में विघ्न आए, ब्रह्मा कुमारियों को देखते ही दरवाजा बंद, हापुड़ 1961, पानी में जहर मिला दिया, गले में सांप पहना दिया, राशन कार्ड राशन बंद कर दिया। जहां ब्रह्मा कुमारियों का प्रदर्शन हो रहा है वहां पर पर्चे बट रहे हैं बाहर, ब्रह्मा कुमारी पाखंड। सेवाओं में विघ्न आए, परंतु बाबा अचल। क्रिटिसिज्म, अपोजिशन, एक्यूजेशन। ये भी एक यात्रा है। अगली यात्रा शारीरिक कर्मभोग। सबसे ज्यादा योगी की परीक्षा बीमारी में होती है। जो बीमारी में हिल जाता है, शायद ज्ञान योग अभी भी कच्चा था। परीक्षा ही तब होती है जब फ्रैक्चर हो जाए, पैर लटका कर हॉस्पिटल में पड़ा है व्यक्ति, वहां क्या बैठकर सोच रहा है। परीक्षा ही तब होती है जब ऐसी कोई बीमारी आ जाए, कैंसर, तब परीक्षा होती है ज्ञान योग की। बाबा को भी बीमारी आई, पर कभी चेहरे पर नहीं आने दिया। बीच में बीपी बढ़ गया था, शुगर बढ़ गया था। मनमोहिनी दीदी ने कहा, बाबा आप अमृत वेला नहीं आया करो। बाबा ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, दीदी ने कहा। बाबा ने कहा, मैं उस डॉक्टर का सुनूं या इस डॉक्टर का सुनूं? फिर भी दीदी ने बहुत मना किया। फिर बाबा ने कहा, ठीक है, देखेंगे। और दूसरे दिन बाबा शॉल ओढ़ के चुपके से आकर पीछे बैठ गए अमृत वेला। बीमारी हो या कुछ भी हो, आंधी तूफान, उस शारीरिक कर्म भोग में भी चुकतुकिया, हंसी हंसी, खुशी से, दुखी होकर नहीं, कंप्लेन होकर नहीं, ब्लेम कर नहीं। अगली परीक्षा, अगली यात्रा आबू में साधना और तपस्या की यात्रा। बाबा तपस्वी थे, साधक थे। आज सुबह का वरदान, साधना यथार्थ, कल का भी और आज का भी। साधनों के अधीन नहीं, साधनों को साथ साथ लेके चलो। यदि साधनों पर निर्भर हो जाओगे तो बाप बीच से निकल जाएगा। यथार्थ साधना अर्थात शक्तिशाली याद, कल का वरदान। यथार्थ साधना अर्थात एक की एक से दिल का संबंध। यथार्थ साधना अर्थात जैसे तुम योग में बैठते हो और फिर तुम्हारा मन बुद्धि एकाग्र होता है, वैसे दिल से मन और बुद्धि को साधना में एक के साथ बिठा दो। यह है यथार्थ साधना। फरियाद नहीं, आराधना नहीं, साधना। कल और आज दोनों दिन वरदान है साधना पर। बाबा साधक थे, अपनी साधना को चालू रखा, आंतरिक साधना, तपस्या चालू रखी, मौन की तपस्या, अशरीरीपन की तपस्या। पहले किताबें भर दी थी, दीवारों को भर दिया, मैं आत्मा हूं से। कितने हुए? 13। फिर है अचल अडोल स्थिति की यात्रा। अचल अडोल स्थिति की यात्रा। चाहे कुछ भी हो, स्थिति को हिलने नहीं देना। इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है। भाषण करने वाले नहीं, स्पीच देने वाले नहीं, कोर्स कराने वाले नहीं, सेंटर चलाने वाले नहीं, प्रभारी नहीं। जिसकी पवित्रता आगे है और जिसकी स्थिति आगे है, वही आगे है सारी परिस्थितियों में। मन को हिलने नहीं दिया, तार एक से जुड़ी रही। अचल अडोल बनने की यात्रा। अगली यात्रा उसमें यज्ञ संचालिका का प्रस्थान, विश्व किशोर भाव का छोड़ देना, उसमें भी अडोल। अगली यात्रा निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी की यात्रा। निराकारी स्थिति, निरंकारी और निर्विकारी। जो बाबा का बृद वाक्य था, आंतरिक तपस्या यही थी। इसकी भी बाबा ने यात्रा 36-37 से चालू कर दी और इस यात्रा में भी धीरे 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 इतना आगे बढ़ गए कि जब 68 की मुरलियों में, 69 की मुरलियों में जो आता था कि बाप स्तन में ऐसा रहता है जैसे यहां है ही नहीं, यज्ञ वत्सों को लगा शिव बाबा कह रहा है। बाप इस तन में ऐसे रहता है जैसे यहां है ही नहीं, परंतु वो ब्रह्मा का पुरुषार्थ बोल रहा था। इस तन में ऐसे रहना जैसे यहां है नहीं। क्या इस देह से हमारी इतनी अनासक्त वृत्ति है? क्या देह के भोग में ही बुद्धि तो नहीं लगी हुई है? दिन रात शरीर का ही चिंतन तो नहीं चल रहा? शरीर की बीमारी, संडे की मुरली, देह की स्मृति, देह का भान, देह के पदार्थ, देह के संबंध, यही एक्सपांशन, यही विस्तार तो नहीं? इसी में ही अटके हुए तो नहीं है? ब्रह्मा का आंतरिक पुरुषार्थ देह से डिटैच होने का था। अगली यात्रा संगठन में सामंजस्य। इतने सारे वैरायटी सोल्स, सबके अपने अपने संस्कार, अपने अपनी वृत्तियां, अपनी अपनी टेस्ट, अपनी अपना शरीर, अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपना अपना स्वास्थ्य, उन सबको एक साथ रखना और लेकर चलना, सबको संभालना, क्या छोटी बात है? यदि 10 लोग हमारे अंडर हो और हमको कहा जाए इनको तुमको संभालना है, वो जैन गुरु को कितनी मुश्किल हो गई थी कद्दू जब लड़ने लगे तो। एक सूत्र में पिरो के रखना सबको, कितनी पावर चाहिए। और दादियों में भी वही संस्कार। ऊपर भोली दादी थी मधुबन में, वो बुलाती थी, इधर आओ, ये लो, ये नया बनाया है आज, तुम ले लो, पर किसी को बताना मत। और फिर दूसरे भाई को बोलती थी तुम उसको बताना मत, और उसको भी एक्स्ट्रा दे देती थी। पालना के संस्कार कहां से सीखा सब दादियों ने? सारे ब्रह्मा से ही आए, सबकी पालना की। कितने हुए? 16, 17 हो गए, 16 हो गए, 2 बाकी है। 16 हो गए, 2 बाकी है। 17वां है नष्टो मोहा की यात्रा। नष्टो मोहा की यात्रा। विश्व किशोर भाव बीमार थे, रात भर उनको जागकर बाबा ने उनके लिए योग किया। 2 बजे देखा सुबह, रात को 10 बजे देखा बहनों ने, बाबा योग में बैठे। 2 बजे देखा तब भी बैठे। सुबह उठकर आई 4 बजे, फिर भी बैठे हैं। बाबा क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं मैं बच्चे को सकाश दे रहा हूं। पहली बार यज्ञ में सकाश शब्द का प्रयोग 1968। दूसरे दिन सुबह दोपहर को 1 बजे विश्व किशोर भाई ने मुंबई में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद बाबा ने कहा आत्मा का पाठ पूरा हुआ, फुल स्टॉप। उसके बाद में कभी कोई वर्णन नहीं किया। रमेश भाई दिखाने आ गए फ्यूनरल राइट्स, पूछा कि क्या बॉडी को यहां लेके आए? बाबा ने कहा कोई जरूरत नहीं है, वहीं पर अंतिम संस्कार करो मुंबई में। फोटो दिखाने आए कुछ दिन के बाद रमेश भाई जी, बाबा ने कहा फाड़ दो इनको, जरूरत नहीं है। जब विश्व किशोर भाव थे बार बार पूछते थे अब कैसा है। शरीर छोड़ा, नष्ट मोहा। यज्ञ संचालिका बाबा की राइट हैंड, मम्मा सबकी देखभाल करती थी। मम्मा चली गई, सब लोग रो रहे। बाबा कहते रो क्यों रहे हो? वो कहते अरे हमारी मम्मा चली गई। क्या सबसे ज्यादा दुख तो ब्रह्मा को होना चाहिए जो हमारा राइट हैंड है, सारे आधे काम जो करता है वही चला जाए और हमको कोई दुख ही नहीं? नष्टो मोहा की स्थिति थी। अंतिम चैप्टर, अंतिम यात्रा, स्मृति स्वरूप, 18वीं यात्रा, ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा बनने की यात्रा है। द जर्नी ऑफ द फर्स्ट एंजल आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, सृष्टि का जो सृजनहार था। अंतिम स्वरूप ऐसा था कि जैसे स्मृति स्वरूप हो गए थे, निरंतर स्मृति, प्रयत्न नहीं कर रहे याद करने का कि अब मैं याद में बैठता हूं, अब याद पूरी हुई, अब योग के कमरे बाबा के कमरे में, ये सब नहीं। सतत निरंतर मैं फादर एंड आई आर वन, जीसस ने जो कहा है यह अनुभूति, अब वो अनुभूति छूट गई, आई एम सन ऑफ गॉड, जो जीसस कहता है कहीं पर, फिर कहीं कहता है कि माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर, उससे भी आगे चली गई अवस्था जब जीसस एक जगह कहता है माय फादर एंड आई आर वन, हम दोनों एक हो चुके हैं, वह स्मृति स्वरूप की अवस्था। हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं? स्वयं को देखना है तो सभी अभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। सभी कागज वगैरह नीचे रख दे, हाथ नहीं लगाएंगे किसी को भी। योग के कमेंट्री के बीच में ही हम आपको कुछ काम देंगे जो आपको करना होगा। कमेंट्री चालू रहेगी। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक तेजोमयी आत्मा हूं। तपस्वियों में महातपस्वी, ऋषियों में राज ऋषि, त्यागियों में महात्यागी, मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। देह के भान से परे वातावरण में संपूर्ण मौन, शरीर की भी सारी हलचल समाप्त, पिन ड्रॉप साइलेंस, मैं एक प्रकाश पुंज हूं। देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने अपना ही स्वरूप, जो मैंने सूक्ष्म वतन में देखा था, संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में, मैं खुद खड़ा हूं जो ब्रह्मा बाबा की यात्राएं थी वो सब मैंने भी पार कर ली है, और मैं संपूर्ण ब्रह्मा समान बन गया। ये आंखें निहार रही है, मैं अपने ही रूप को देख रहा हूं। कितना चमकीला है, निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण वैराग, सभी परिस्थितियों में अचल अड़ोल मैं मास्टर ब्रह्मा हूं। अब इसी मौन की अवस्था में आपको एक जो कागज दिया गया है, अपने ही संपूर्ण स्वरूप के नाम एक खत लिखना है, जहां लिखा है डियर एंजल, सामने अपना नाम लिखना है, कोई आवाज नहीं, संपूर्ण मौन, आत्मिक स्थिति, धीरे धीरे बात करो अपने संपूर्ण स्वरूप से। क्यों ये दूरी, क्यों ये अंतर, कौन सी कमियां अब भी मुझ में है, सोचो। आत्मिक स्थिति कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं, डियर एंजल सामने अपना नाम, आप अपने संपूर्ण स्वरूप से बात कर रहे हो, आप अपने संपूर्ण स्वरूप के ही नाम एक खत लिख रहे हो, चाहे तो उसे बुला लो, पुकारो, आह्वान करो, जो मर्जी है। अगले 3 मिनट संपूर्ण मौन में अपने ही संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान स्वरूप के नाम एक खत लिखो। रोकना बंद, लिखना बंद कर देंगे, फिर से आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। देखो अपने फरिश्ते स्वरूप को, अब ये फरिश्ता स्वरूप धीरे धीरे मुझ में समा रहा है। मैं स्वयं ब्रह्मा बाप समान बन चुका हूं, मैं ही मास्टर ब्रह्मा हूं। अनुभव करें कि जिस स्वरूप को मैंने अब तक जो लिखा था, वो मैं खुद बन गया हूं। वो स्वरूप मुझ में समा गया है। अब जो पहला खत लिखा था, उसके खत के उत्तर में दूसरा खत संपूर्ण हमारा ही स्वरूप हमें लिख रहा है। अगले 2 मिनट के लिए अब उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि मैं वह संपूर्ण स्वरूप हूं, और डियर अपना नाम लिखकर फिर से कुछ बातें लिखनी है। अगले 2 मिनट के लिए जो पहले हमने अपने संपूर्ण स्वरूप से जो प्रश्न किए थे, उसका उत्तर संपूर्ण स्वरूप दे रहा है। फिर से आत्मिक स्वरूप में स्थित 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर देंगे और अनुभव करेंगे कि मैं अपनी संपूर्ण अवस्था में स्थित हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं। ॐ शांति।